ओम शांति। आज हमारे बीच बाप दादा के मुख कमल से ज्ञान बुलबुल नाम से सुशोभित आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से इसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वर्तमान में आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त मुख्य प्रशासिका होने के साथ ही माउंट आबू के एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर और जर्मनी स्थित सेवा केंद्र के निदेशिका भी है। बचपन से ही समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत आदरणीय दीदी जी को सन 1957 में मात्र 15 वर्ष की आयु में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने समस्त भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के साथ ही पॉलिटिकल साइंस में स्नातक डिग्री हासिल की है। अल्प आयु में ही थोड़े समय के लिए गर्ल्स स्कूल में प्रधान अध्यापिका के रूप में अध्यापन कार्य भी किया है। बाल्यकाल से ही समाज सेवा में आपकी गहरी रुचि थी। तब आपने महसूस किया कि आध्यात्मिक सेवा ही समाज सेवा का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और आपने जीवन का यह मार्ग चुना। अपनी ओजस्वी वाणी के साथ भारत सहित 75 देशों में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेते हुए ज्ञान के अनेक गहन रहस्यों का व्यावहारिक जीवन से संबंध और उसकी आवश्यकता को आपने सिद्ध किया है। वर्ष 1974 में विदेश में ब्रह्मा कुमारी संस्था का पहला सेवा केंद्र लंदन में खोलने के निमित्त आप ही बने। राजयोग मेडिटेशन के मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के ऊपर सकारात्मक प्रभाव विषय पर आपने अनेक व्याख्यान दिए हैं। विशेषकर मस्तिष्क की आंतरिक कार्य प्रणाली को रुचिकर ढंग से स्पष्ट करने में आप पारंगत हैं। दीदी जी के प्रवचनों का नियमित प्रसारण ब्रह्मा कुमारी के पीस ऑफ माइंड चैनल पर किया जाता है। यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट के द्वारा भी अनेक आत्माएं आपके वक्तव्यों से लाभान्वित होती है। सकारात्मक सोच, तनाव मुक्त जीवन शैली, जीवन मूल्य, आंतरिक शक्ति की खोज और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अध्यात्म की व्याख्या आपके प्रिय विषय है। साकार मूल्यों में भी बाबा आपकी विशेषताओं के लिए आपको एक सैंपल रूप में याद करते थे। ऐसे बाबा मम्मा की साकार पालना प्राप्त अनुभव और धारणाओं की मूर्त आज हमारे मध्य उपस्थित थे, तो मम्मा के सानिध्य के उन्हें अनुभव के आधार पर दीदी हमें बताएंगी कि मम्मा मम्मा कैसे बनी। आदरणीय सुदेश दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद। हैप्पी सतगुरुवार। सदगति दाता बाबा के बच्चे ताशगंज नहीं सकाशगंज सबको सकाश देने वाले, ईश्वरीय प्रकाश फैलाने वाले, अंधकार को मिटाने वाले, पापिता को ज्ञान स्वरूप योग युक्त होकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले मीठे भाई बहनों को नमस्कार। ओम शांति। मैं आज इस फुलवारी को, क्योंकि विदेश में रहते भारत में कम टूर किया है, विदेश में तो सुना ना 100 देशों में गए, 100 देशों में, क्योंकि ऐसे भारत में आते थे 15 दिन 20 दिन, फिर वापस विदेशियों का सीजन होता था तो भारतवासी नहीं होते थे, और भारतवासियों का सीजन होता तो हम नहीं होते थे यहाँ। तो इसीलिए नक्शे का पूरा पता नहीं था, तो पूछा कहाँ से है। ऐसे तो बाबा के बच्चे यहाँ भट्टियाँ, क्योंकि आप लक्की हो, बहुत सौभाग्यशाली हो कि पांडव भवन में बाबा की प्रदान भूमि, जहाँ कण कण में बाबा के वाइब्रेशन समाये हुए हैं, और दादियाँ पीछे सब जगह गई हैं, सारे यज्ञ के जो वत्स थे, वो जो शुरू शुरू का खजाना लेके आए अपने श्वास में, संकल्प में, अपनी धारणा में, सिंपल योगी पर श्रेष्ठ स्थिति वाले तपस्वियों ने आकर के जो वायुमंडल में जब प्रवाह फैलाया, तो माउंट आबू, क्योंकि बाबा राज योग सिखा रहे हैं, राजाओं का राजा बना रहे हैं, तो अभी राजयोग सीख के राजाओं का राजा बनने वाले स्थान को भी आबू राज नाम मिल गया। आबू राज माउंट आबू, आपने देखा होगा लिखा हुआ आबू राज, ये पहले नाम नहीं था, आबू तो था, माउंट आबू था, पर आबू राज। तो ये भगवान ने राजयोग जहाँ आकर के शुरू किया, सिखाया, अन्य स्थानों पर तो अपने वो जो कहते हैं कि यज्ञ रचते थे पुराने जमाने में राजाएं, और घोड़ों को भेजते थे, चैलेंज करते थे, जो रुद्र ज्ञान यज्ञ, अश्वमेध ज्ञान यज्ञ रच के वो यज्ञ रचते थे तो घोड़े को छोड़ते थे, और जो उस घोड़े को वश कर ले वे वही विजयी रतन है। तो वो कोई और अश्व नहीं थे, आप सब बाबा के बच्चे और आदि रतन थे, जिन्होंने अपनी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों को इशारे से चलना सिखाया, ट्रेनिंग दी। तो दादी दादियां, बड़े भाई, मम्मा बाबा, तो उनके श्वास संकल्प में बाबा बाबा ही था, और 14 साल की तपस्या, उसमें भी पालना में बाबा ने जगदम्बा माँ को, सरस्वती माँ को, जो 18 साल की कुमारी, कॉन्वेंट में पढ़ने वाली, इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाली, कल्चर भी, और उनके फ्यूचर को देखते हुए भविष्यवाणी, जैसे कोई हस्तरेखा देख करके बता देता है, बाबा ने मस्तक की रेखाएं पढ़ी। तो मम्मा को आपका टॉपिक है मम्मा, मम्मा कैसे बनी, यही है ना बहन जी टॉपिक क्या है? मम्मा समझ गई, मम्मा मम्मा कैसे बनी,
मम्मा मम्मा कैसे बनी,
हाँ यही ना, मम्मा मम्मा कैसे बनी। अभी आपको ज्यादा अच्छा सुनाई पड़ेगा क्यों? क्योंकि ये कान बंद है तो मुख जो है वो धीरे बोलता है, कान खोल दिया तो मुख भी खोल गए कुंडल पहने हुए ना फैशनेबल बन गए हैं, तो कुंडल पहनते तो सुनते हैं, नहीं तो नहीं सुनते अच्छा तो मम्मा मम्मा कैसे बनी? मम्मा की कहानी तो बहुत ही प्रेरणा देने वाली, रियलाइजेशन देने वाली, शक्ति और सकाश देने वाली। हमारा जन्म तो ब्रह्मा बाबा से हुआ, पर जो पहली पालना मिली वो मामा से और दीदी मनमोहिनी जी से मिली। दीदी मनमोहिनी जी मामा के साथ कंट्रोलर थी यज्ञ की। मामा की एडवाइस पर दीदी मनमोहिनी जी सारा यज्ञ चलाती थी। तो मामा का आना अपनी मामी के साथ, वो मंडली में आना हुआ, तो मामा, उनके फादर ने शरीर छोड़ दिया था, तो मामा मामी के पास रहते थे, माता जी भाई के पास रहते थे। तो वो आती थी वो मंडली में, उनको अच्छा लगता था। तो एक दिन, इनका नाम राधे था, तो उस समय वो सिंध में ही थी, नहीं तो पढ़ाई तो बॉम्बे में भी पढ़ी। तो और फिर बाकी वहां एक्स्ट्रा पढ़ाई वहां सिंध में। तो उनकी मामी ने उनको कहा चलो तुम भी हो मंडली में चलो। तो मामा उनके साथ गई, अपनी मामी और माँ के साथ। तो ये ओम मंडली की जो ध्वनि होती थी, ओ एक्सरसाइज हठ योग वाली नहीं थी। ओम आत्मा स्वरूप में बाबा ने जब यह रियलाइज किया कि मैं आत्मा हूं, और बाबा शिव बाबा ने टच किया ब्रह्मा बाबा को, तो ब्रह्मा बाबा के अनुभव साक्षात्कार के हैं, और मम्मा का अनुभव साक्षात मम्मा से साक्षात्कार करने का है। मम्मा जैसे कि साक्षात्कार कराती थी अपनी दृष्टि से, मधुर वाणी से, ईश्वरीय शिक्षाओं से, यहाँ कौन सा स्थान है ये। तो पहले दिन जब मम्मा आई, मम्मा हारमोनियम बजाती थी, मम्मा को हारमोनियम की प्रैक्टिस थी। तो सुन करके ओम मंडली का अनुभव करके एक गीत लिखा, ओम मंडली में, सिंधी में लिखा था, ओम मंडली मैं जब गई, जब ओम मंडली में गई तो मीठी बहनों मैंने क्या देखा। ओम की ध्वनि इतनी दिव्य थी कि अंदर हृदय को कली को खिला दिया, आनंद की लहर का अनुभव होने लगा। इस देवान की शुद्ध बुद्ध भूल ओम स्वरूप की अनुभूति होने लगी। तो उसको मामी को वो संगीत मम्मा का बोल और सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। वो ऐसे लगा जैसे वही सॉन्ग सुनते सुनते फिर से ओम की ध्वनि का रस ले रही है। तो उसने कहा मम्मा को कि तुम ये जो सॉन्ग तुमने लिखा है कल बाबा को सुनाना। तो मम्मा ने, उनकी मामी ने बताया किसने कुछ लिखा है। बाबा ने कहा भले बजाओ सुनाओ। तो जैसे ही वो बजाया, क्योंकि अपना अनुभव सुनाया था, तो बाबा ने फौरन उनके भविष्य को जैसे कि परख लिया कि जो अनुभव एक ही दिन में आने से हृदय की शुद्धि, बुद्धि की क्लैरिटी, एक्सप्रेस करने का विश्वास और करेज और प्रेम से वो गीत गा के दूसरों को अनुभव कराने लगी। तो ऐसे धीरे धीरे वास्तव में मम्मा की ऐसा सुना है, जानकी ने बताया था कि मम्मा की वैसे सगाई हुई हुई थी, परंतु बाबा के साथ एक दिन झूले में बैठी और बाबा को बताया मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मतलब मुझे यही डिसाइड करना है, मैं तो जीवन ये सदा अनुभव करती रहूं। तो रोज की जो बाबा के बोल होते थे वो बहुत अच्छी तरह से हृदय में ही नोट कर लेती थी। सत्संग में आना शुरू किया बाकी सब की तरह। तो बाबा कश्मीर में गए अपने परिवार के साथ, अमरनाथ की जहां पर यात्रा है। तो उस समय कश्मीर में बाबा रोज रात को 2:30 बजे जागते थे और बाबा शिव बाबा उनको कुछ न कुछ प्रेरणा देते थे, लिखते थे। तो बाबा जब गए कराची में तो 5 बहनों को निमित्त बना के गए थे, उसमें से मम्मा एक थी, कुमारका दादी थी, प्रकाशमणि दादी, मम्मा, दीदी तो मनमोहिनी वैसे भी कंट्रोलर थी, मिठू दादी थी पटियाला में रहती थी, मतलब ऐसे 5 शक्तियों को निमित्त बना के बाबा गए। और वो जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को लिखत लिखवाते थे नोट्स, अभी कुछ दिन पहले भी ब्रह्मा बाबा की मुरली में था कि बाबा लिखवाते थे, हमरे उठ जाते थे, मुरली कोई ज्ञान नहीं सुनाते थे, पर पहले ऐसे आधी रात 2:30 बजे उठ जाना और लिखवाते थे। तो बाबा फिर वो नोट्स भेजते थे और कहते थे कि टर्न बाय टर्न आप एक एक इनको जो बाकी जो आ रहे हैं उनको सुनाओ। तो सब कुमारियों से मम्मा का अनुभव और उस नोट्स का वर्णन करना और ओम की ध्वनि से ऐसा वातावरण क्रिएट कर देना, तो बाबा जब तक आए तो सभा 350 की हो गई। बाबा की एब्सेंट में, ये नहीं कि बाबा को देख के ही तो आए, वो मम्मा की ये जो रूहानियत की लोरी थी अथवा ये रूहानियत का हल न थी तो पढ़ाई नोट तो सबके पास आते थे, पर मम्मा अभ्यास करती थी उस पर। मम्मा 2 बजे उठ जाती थी, 2:30 बजे उठ जाती थी, और जहां पर ये कुंज भवन में कुमारियां रहती थी, मैं भी कराची गई हूं, मैंने देखा आंगन मतलब, तो वहां कुर्सी पर बैठ के मामा ऐसा शक्तिशाली योग करती थी जो ये बहने आंख खुल जाती थी उनकी का, पता नहीं ऐसे लगता था कि कोई शक्ति इस वातावरण में फैली हुई है। तो का उठ के देखते थे, क्योंकि मंजिला मकान था, तो का देखते थे तो लगता था मामा ऐसे जैसे चंद्रमा की लाइट आसपास मामा के है और चंद्रमा की शीतलता रहती। तो पहले कोई अमृत वेले का योग नहीं होता था, ये अव्यक्त बाबा ने मामा को जो टच किया और शिक्षा दी कि सारी दुनिया अज्ञान की नींद में सोई हुई है, हे राधे तुम राधे हो, तुम्हारा पार्ट ये है कि सोए हुए को जगाना है अज्ञान निद्रा से, और तुम्हारी योग शक्ति, अभी समय बहुत कम है, तुम्हारी योग शक्ति इस जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से जो विनाश ज्वाला प्रकट होगी, अब उसको योग पंखे का काम करेगी। अब पंखे का काम करना मतलब आग जल रही होती है तो कभी कभी क्या है, उपलों की आग या लकड़ियां जल के राख उसके ऊपर आ जाती है तो वो भड़कना बंद हो जाती है, यानी आग को है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी योग शक्ति पंखे का काम करेगी। अभी देखो जैसे पुराने जमाने में अंगीठी जलाते थे ना आप में से, अभी तो जमाना बदल गया, गैस है स्विच ऑन किया, परंतु हम छोटेपन में गांव में भी रहे हैं तो बराबर चूल्हा या अंगीठी जब ठंडी हो जाती थी पंखा लगाते थे तो आग भड़क उठती थी। तो बाबा ने कहा तुम्हारे योग की शक्ति से पावर भरेगी जो विनाश चला भड़केगी, और ये योग की शक्ति विकर्मों का विनाश करेगी। तो जैसे आज बाबा ने कहा ना कि और तो कोई उपाय है ही नहीं, योग याद के बगैर पिछले विकर्म भी भस्म नहीं होते, योग की शक्ति से ही मन मना भव के मंत्र से ही तुम बच्चे बाबा के साथ मिलन मना के अनुभव कर सकते हो। और जो बच्चे इस जो अमृत वेले परमात्म शक्ति का अनुभव करके जागेंगे वो दूसरे सोए हुए को जगाएंगे। तो बाबा मम्मा सिर्फ पढ़ के नहीं सुनाती थी, जो अव्यक्त बाबा ने उस समय अव्यक्त प्रभु ईश्वर भक्ति, भक्ति का ही नाम था प्रभु या ईश्वर पढ़ा रहे हैं, बाद में धीरे धीरे क्लियर हुआ ना शिव बाबा का रूप। तो मम्मा की वो स्थिति इतनी पावरफुल होती थी जो धीरे धीरे बाकी भी ज्वाइंट होते गए, अमृत वेला पावरफुल होता चला गया। और बाबा की एब्सेंट में कोई भी डिसीजन लेना होता था, 350 भाई बहन हैं, उनके लिए सब प्रबंध यज्ञ में, कोई बात रिश्तेदारों से तो कनेक्शन रहा ही नहीं, वो तो आ गए यज्ञ में एक भट्टी बन गई। भट्टी क्यों कहा? क्योंकि बाहर कहा किसी संबंधियों के पास नहीं जाते थे, न संबंधी अंदर आ सकते थे, तो यानी पैक था एटमॉस्फेयर बिल्कुल ऐसा योग युक्त स्थिति का, साइलेंस की शक्ति। तो मम्मा की नेचुरली साइलेंस की शक्ति थी। उस साइलेंस में शुभ भावना और शुभ कामना जो भरी हुई थी और निर्माणता थी, जो कि थी तो छोटी, उनसे बड़ी बहनें भी थी, माताएं भी थी, पर मामा ने बड़े स्नेह से प्यार से जो भी भाई बहन आते थे उनकी पालना की। बाबा जब वापस आए तो देखा कितने प्रभु के बच्चे जन्म ले लिए, तो बाबा ने जगदम्बा मम्मा को मम्मा कहना शुरू किया। ओम राधे नाम था, ओम मंडली थी, फिर जो रजिस्ट्रेशन थी वो ओम राधे के नाम थी, तो संस्था की हेड ओम राधे थी, सबसे छोटी परंतु सबसे श्रेष्ठ बुद्धिवान सरस्वती सीरिये गई। और दूसरा, मम्मा की विशेष धारणा थी हर एक से को सम्मान देना, रेस्पेक्ट देना, ये नहीं नशा चढ़ा कि मेरे को बाबा ने बड़ा बड़ा दिया है, नहीं। बाकी जो माताएं थी, बहनें थी, सबके साथ बहुत निर्माणता से, प्रेम से, सम्मान से रहती थी। और जिम्मेवारी बाबा ने दी तो जो यज्ञ की सामग्री खरीदनी है या यज्ञ के लिए प्रबंध करने का है, तो ऐसे दीदी जी के साथ मम्मा की राय और दीदी ये मिलकर के जैसे संभालने लगी। और सब कार्य जो होता था, भट्टियां अलग 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 ग्रुप के नाम से भट्टी होती थी साइलेंस की। ऐसा भी होता था जो समझो मानो कमरे के अंदर ही, कमरा रूम, एक रूम में पांच की भट्टी है, चार की भट्टी, उनको अंदर ही भोजन मिलता था, बाथरूम तो अंदर है, और सारा दिन साइलेंस में रहने के। और उसी प्रकार से वो योग की तपस्या, भोजन भी सब सफेद होता था, मसाले नहीं डालते थे, हल्दी भी नहीं डालते, जैसे कि वतन का भोजन खिलाते थे। खान पान भी बहुत, नहीं तो जो बाहर खाना जो बनता था सिंध में, सिंधियों का खाना बहुत तली हुई चीजें होती है, मसाले वाली होती है, क्योंकि उनका विदेश में जाना और वैसे भी बिजनेस वाले, तो खान पान बड़ा रॉयल होता है। जैसे बाबा के यज्ञ में अब भी साधारण भोजन नहीं बनता, पांडव भवन में फिर भी थोड़ा साधारण है, परंतु हर चीज एक 18 उसका एक कनस्तर घी का रोज खत्म होता था। रोटी बननी है, सब्जी बननी है, आलू तलने हैं, मिठियां बनानी है, मिठाई बनानी है। बाबा ने अपना सब कुछ समर्पण किया था, तो बच्चों की पालना ऐसे थी जैसे कि राजा ही है, परंतु भट्टी करने वालों को फिर बिल्कुल उससे सिंपल। और बाहर के वातावरण में साइलेंस से सब कुछ होता था, बोर्ड पर प्रोग्राम लिखा रहता था उस अनुसार ही प्रोग्राम चलता था। बाबा ग्रुप ग्रुप को वॉक कराने ले जाते थे, एक्सरसाइज कराने ले जाते थे कराची समुद्र के किनारे। तो कहने का मतलब ये कि मम्मा का शुरू से अपने जीवन में अप्लाई करके फिर दूसरों को दिया, प्रेरणा की स्रोत बनी, पालना के निमित्त बनी। तो बाबा ने जब मामा उनको मामा कहना शुरू किया तो सबने मामा कहना शुरू किया। मामा की माँ भी मामा को मामा कहती थी क्योंकि उसका रूप ही बदल, का रूप ही बदल गया। उनका रूप वो कुमारी वाला नहीं रहा, परंतु यज्ञ के निमित्त, पालना करने के निमित्त, पर स्नेह से, निर्माणता से, किसी की बात सुन के, समझ से, गंभीरता से, तो जो गुण ग्रहण किए थे दूसरों के, मम्मा के जीवन से वो झलकते थे। तो गुण ग्रहण करने वाली फिर भक्ति मार्ग में निशानी है हंस की सवारी, मोती चुगना। तो कोई पक्षी हंस की बात नहीं है, परंतु गुण ग्रहण करके उन गुणों को धारण करना और गुणों का ही दान करना। फिर मामा के अंदर गंभीरता बहुत थी, मुस्कराती थी बहुत मीठा, कभी हंस के ऐसा नहीं सुना खिलखिला के मामा हंसी हो। चलती थी बहुत जैसे कि फरिश्ते की चाल, शांति से, प्रेम से। तो हमारी पालना ऐसे धीरे, क्योंकि प्रैक्टिकल यज्ञ को संभालना और बाबा को जो भी पत्र भेजना होता था राजाओं को, वाइसराय को, वहाँ गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को, पंचायत के प्रेसिडेंट को, मेयर को, मम्मा के नाम से पत्र जाते थे। उसमें फिर ज्ञान की बातें जरूर होती थी। तो ऑटोमेटिकली मम्मा जैसे कि एक ऑफिशियली अभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहते हैं भाई, जो भी मुख्य प्रशासिका, परंतु ये जैसे बस ओम राधे ही कह रही थी। पर यज्ञ में पता था कि हर कर्तव्य मामा के टाइटल से ही जाएगा। तो वो पत्र अब भी लंदन की लाइब्रेरी में, जो मामा ने लंदन में जो रानी को भेजे वो पत्र, वो झाड़ त्रिमूर्ति का झाड़ का चित्र, वो भी मम्मा के नाम से गया था, ताकि ये ज्ञान समझ तो उनको नहीं आया। वो तो एक भाई इंडिया से चीज आई है, वो लाइब्रेरी में समय मतलब जो उनका पुराना स्टॉक है उसमें रखी है, शायद ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में है, मुझे 100% मालूम नहीं, पर है लंदन में। ऐसे ही और स्थानों पर भी। तो बाबा को ऑफिशियल कोई कार्य कराना होता था तो भी मम्मा का। फिर जब ये आंदोलन शुरू हुआ कि इतने सारे पवित्र जीवन जीते हैं, निश्चय हुआ कि भगवान हमको पवित्र बना रहे, हमको पवित्र दुनिया की स्थापना करनी है, तो जो भी दादियां आई छोटी उम्र में ही, वो एक जादू क्यों लगा, किस लिए लगा कि अचानक परिवर्तन आ गया, अचानक हिम्मत आ गई, निर्भयता आ गई, स्वमान जागृत हो गया, दृढ़ता अपने जीवन में रखी कि मुझे तो ऐसा ही जीवन जीना है। तो समाज में तो ये लड़की कहे मुझे शादी नहीं करनी, घर में रहते पवित्र रहना, ये तो नेचुरली है, एक नई बात है। उसका विरोध तो यहाँ इंडिया में भी रहा, परंतु वहाँ क्योंकि छोटे बच्चों का बाबा ने बोर्डिंग खोला था, तो बचपन से ही मम्मा की पालना, बाबा की पालना, वो जो उस समय 7-8 साल के बच्चे थे, मजार दादी 8 साल की थी, दूसरी दादी कोई 11 साल, 10 साल, कोई 15 साल, कुमारियां कोई 15 साल से ज्यादा बड़ी नहीं थी। हाँ, माताएं शादीशुदा थी, परिवार के परिवार जो आए वो बच्चों सहित आए, ईशुदादी के पेरेंट्स, रतनमणि दादी के पेरेंट्स, चंद्रमणि दादी के पेरेंट्स, उन्होंने भी यज्ञ में समर्पण किया बाबा को देख के। परंतु फिर भी मम्मा की पालना सबको बराबर ऐसे मिलती थी, सब मम्मा को मम्मा ही कहते थे। मेरा पर्सनल अनुभव मम्मा का विश्वास दिलाने का या उत्साह दिलाने का कार्य प्रैक्टिकल में, तो हमारे साथ मैं जब आई उस समय मैं बीए कर रही थी, बाबा से मेरा जन्म हुआ, पर बाबा तो टूर पर आए थे तो चले गए, मम्मा फिर आई थी दिल्ली रजौरी में। तो जगदीश भाई ने एक किताब लिखी थी, लिटरेचर लिखना शुरू किया था, तो मम्मा से प्रूफ रीडिंग कि मामा आप प्रूफ रीडिंग करेंगे तो फिर उस हिसाब से किताब छपाएंगे। टाइपराइटर तो उस समय था भी नहीं, कैपेसिटी नहीं थी इसके लेने, तो जगदीश भाई छोटे छोटे अक्षरों में, कागज की भी बचत करते थे, बहुत छोटे अक्षरों में समझो वो सारा लिखते, ताकि फिर छपाना है तो दे ले। मेरे को मामा ने कहा कॉलेज से, तुमको अगर जल्दी आ सकती हो या कॉलेज के बाद, ये मेरे को पढ़ के सुनाओ, क्योंकि मेरे को हिंदी इतनी पढ़ नहीं सकती। मैं मामा को पढ़ के सुनाती थी, मामा बहुत ध्यान से प्रेम से सुनती थी, और कोई करेक्शन देनी होती थी तो अलग पेपर पर वो धा का जहाँ कुछ लिखने वहाँ स्टार बना के नंबर डाल के सिस्टेमेटिकली, ताकि वो ऐड कर सके, ऐसे करके समझाती थी कि सहज हो उनको भी। फिर सुनने के बाद जो बात थोड़ी गहराई वाली होती थी, मम्मा उसका महत्व कितना इस पॉइंट से, ये बाबा की पॉइंट, वो आधार तो बाबा की मुरलिया ही थी। जगदीश भाई ने कोई अपनी पॉइंट नहीं लिखी थी, पर बाबा की मूल्यों के आधार पर ही हिंदी में इस प्रकार से जो लोगों को समझ आ सके इस प्रकार से लिखे थे। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता था, तो मम्मा से अच्छा जैसे जल्दी जल्दी मिलने का चांस मिला, तो मैं बताती हूँ, विश्वास, ट्रस्ट, उत्साह, उमंग, ये मम्मा में कैसे एक जीवन देने की कला थी, आगे बढ़ाने की। तो मेरे को एक दिन अचानक कहा सुदेश, वहां की टीचर रजौरी गार्डन की, क्लास कराने जाती, ग्रुप था भाई बहनों का, दोपहर को मिलते थे, मंगलवार को उनका क्लास होता था, जिसको अभी गीता पाठशाला कहते हैं, वहां पर क्लास होता था। तो कहा कि बहन नहीं जा सकती है, तुम जाके आज क्लास कराओ। मैंने कहा मम्मा, मैं आश्चर्य, मैं तो कभी क्लास कराया नहीं। क्योंकि मैं तो अभी नई नई थी, स्टूडेंट ही थी, तो कहा कि जो तुम मुझे पढ़ के सुनाती हो वो तुमको समझ में आता है? मैंने कहा बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, खास करके आप कितना ध्यान से और प्रेम से अटेंशन दे के सुनते हैं। अच्छा भी लगता है कि मेरे को कंपनी मिलती है, दूसरा समझ भी बहुत अच्छी मिलती है, तीसरा मेरे को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि यानी हर बाबा के महावाक्य के पीछे गहराई कितनी है या उसका महत्व कितना है। शब्द साधारण हो परंतु महत्व बहुत ज्यादा है। तो मम्मा ने कहा जो चीज तुमको अच्छी भी लगती है, समझ में भी आती है, फायदे वाली भी है, दूसरे को सुनाने में क्या मुश्किल आता है? अब मैं क्या जवाब दूं? कहा तुम क्लास नहीं कराना, क्लास नहीं कराना, जो तुमको ये अनुभव है ना वही अनुभव सुनाना। तो जैसे मम्मा ने अपने अनुभव से बाबा ने विश्वास रखा, हमको जो अनुभव सुनाने सुनाया वहां पर मामा से जो मिला था, तो उन्होंने कहा मामा अगले मंगलवार को भी सुदेश को भेजना। मैं गई फिर तीसरे मंगलवार भी, ऐसे मंगलवार जाते जाते मेरा ही मंगल हो गया, मेरा ही कल्याण हो गया। ये था विश्वास, भावना, सकाश, प्रेरणा देना, उत्साह बढ़ाना, नहीं तो ये कॉलेज की लड़की क्या कराएगी। तो मम्मा के उत्साह से नेचुरली, मम्मा रजौरी गार्डन में रहती थी और फिर ऑलराउंडर दादी गुलजार दादी की माताजी, ऑलराउंडर उनको कहते थे, वो दीदी जी के साथ थी। फिर हम तो सेंटर पर मतलब रहने लगे, वो मैं बताऊंगी। मम्मा पर, मम्मा ने हमारा मतलब नया जन्म कैसे दिया। तो विश्वास से विश्वास कैसे बढ़ाते हैं, तो एक दिन गुलजार दादी हमेशा जहाँ ब्रजमोहन भाई रहते थे उनके पेरेंट्स करोल बाग में वहाँ रहती थी, वहाँ पर बाबा का सेंटर था, वहाँ से आती थी रजौरी गार्डन। तो एक दिन नवरात्रों का भाषण था, नवरात्रे के दिन थे, नवरात्रों का भाषण था। मैं कॉलेज से आई, वही सलवार कुर्ता जो पहनने ड्रेस होती है उसी में मैं गुजार दी, आई नहीं। मैसेज आया कि वह नहीं पहुंच सकेगी, तबीयत का कारण होगा कुछ। तो मेरे को ऑलराउंडर दादी कहती है लाल अंदर आना, वो लाल बोलती थी प्यार से ऐसा बोल, कहा कि गुलजार नहीं आ रही है और ये पब्लिक बैठी है, अभी भाषण वाला तो कोई और है नहीं, तो तुम ये भाषण करो। मैंने कहा मैं तो स्कूल, ये तो कॉलेज की ड्रेस पड़ी हुई है। तो कहा मेरी साड़ी पहनो। मैंने कहा कभी साड़ी पहनी नहीं है। कहा मैं सिखाती हूँ, अपना पेटीकोट दिया, ब्लाउज दिया, साड़ी पहनाई, स्टेज पर बिठा दिए। देखो मतलब मम्मा ने प्रेरित फिर कैसे किया। कलम कैसे लगती है विश्वास से विश्वास बिठाने की। तो मैंने अब 25 मिनट जय माँ लक्ष्मी सरस्वती ज्वाला दुर्गे माता कल्याणी चामुंडा सुख सुकम साकुम्बरी रुद्राणी ये भक्ति में तो पढ़े हुए थे। फिर एक एक का यानी मैं तो बताया सरस्वती की हंस की सवारी है, दुर्गा की शेर की सवारी है, अम्बा की बाघ की सवारी है, उसका मतलब क्या है, और जगदम्बा माँ प्रैक्टिकल में इनका स्वरूप है। तो फिर क्या था, जगदीश भाई और वहां के राजकुमार भाई रजौरी गार्डन के बड़े भाई थे, इंजीनियर देसू इंजीनियर के चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर थे, वो दोनों पीछे बैठे थे। तो उन्होंने आपस में समझो हंसते कुछ बात किया, बीच बीच में कुछ एक दो को बोल रहे थे। अब देखो हमारे मन के अपने मन का संकल्प, मैंने सोचा कि मेरे को दादी ने यहाँ बिठा दी है, ऑलराउंडर दादी ने, मेरे को इतना तो कुछ बोलना आता नहीं, ये भाई जगदीश भाई अगर भाषण करते आ जाते पहले तो दादी इनको बिठा दी। मैंने जल्दी जल्दी उसको पूरा किया 10 मिनट और बोल के, और फिर कहा अभी जगदीश भाई सुनाएगी। जगदीश भाई ने कहा आपने तो सब सुनाया है ना, तो अभी तुमने बंद क्यों किया, इतना अच्छा तो बोल रही थी। मैंने कहा मैंने सोचा मैं तो कुछ मेरे को तो बोलने की प्रैक्टिस इतनी है नहीं, और मैं ये भाषण करने बैठ गई हूँ, आप करेंगे तो अच्छा होगा, तो शायद मेरे को लगा आपको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा देखो ये मन कितना चंचल है, अनुमान कितनी खराब बात है। उन्होंने कहा हमको तो खुशी हो रही थी कि देखो यानी अचानक दादी ने उठा के आज्ञा का पालन किया है, फौरन से बैठ गई है हिम्मत रख के, जो कहा जी जी हजूर जैसे मम्मा हुक्म हुक्म चला रहे तो ये भी हुक्म है पालन करना है। तो हम तो महिमा कर रहे थे कि मम्मा ने इनको अच्छा ट्रेंड किया है, और तुमको ये आया कि हम अच्छा नहीं बोल रहे हैं। तो ये था मतलब। फिर दीदी ने भी इसी बात में हमारा हिम्मत बढ़ाई, रहने लगी मैं सेंटर पर। मैं मम्मा पर कैसे समर्पण हुई वो बताती हूँ। फिर मम्मा के अंदर एक एक दिन में कितना कईयों को प्रेरणा मिलती थी। मम्मा के दिल्ली में होते आसपास वाले स्थान वाले भी आते थे, पंजाब में तो सेंटर खोल गए थे। तो मैं जब रहने लगी तो दीदी जी मन मोहिनी के घुटनों में दर्द होता था, एज भी थी, ऑपरेशन की तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं उठता था, वही मालिश करके मेथी का पानी पी के मतलब वही घर के इलाज से ही चलती थी। और बाप दादा बाप दादा बाप दादा ऐसे करके चलती थी बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी नहीं है तो दादी की। तो मेरे को कहा कि आज मैं नहीं जा सकती हूँ क्लास कराने, दूसरे शहर में जाने का था, रिक्शा में बैठना फिर बस में चढ़ो फिर वहां से उतर के रिक्शा में जाओ, चढ़ना उतरना इतना गोडे नहीं चलेंगे। मैंने कहा वो दीदी का इंतजार कर रहे हैं कि दीदी आने वाली है, मेरे को देख के कौन सुनेगा, मैं क्या सुनाऊंगी। तो कहा तुम बैठना वो बेशक समझ रहे दीदी आ रही है, तो तुम ये नहीं समझना सुदेश बैठी है, दीदी ने भेजा मैसेंजर, मेरी सोल तेरे में प्रवेश हो जाएगी। मैंने कहा ऐसे कभी होता है क्या, आपकी सोल निकलेगी और मेरे में प्रवेश होगी, ये तो असंभव बात है ना, ये तो कभी हो भी नहीं सकता, तो आप क्या कह रहे हैं। कहती है कि मैं भी तो बाबा जो टच करेगा वही बोलती थे ना, तो मैं आपको अपनी तरफ से भेज रही हूँ, बाबा जो मुझे टच करने वाला था, जो बाबा का प्लान था, वो आपसे करवा लेगा, करण करावनार तो वो है। तो ये विश्वास, बड़ों का विश्वास छोटों को शक्ति देने का, जड़ों प्रैक्टिकल बात है। मम्मा ने सबको उमंग उत्साह दिलाया, दादियों ने उमंग उत्साह दिलाया, क्योंकि ये तो पता है कि फल जड़ में नहीं लगते, फल टहनियों में लगते, पत्ते फूल टहनियों पर खिलते। तो हर एक की विशेषता को विशेष समझ के उसको सेवा में सहयोग देना, ये मम्मा हमेशा उत्साह दिलाती थी और रोज क्लास कराती थी कुमारियों का। तो मम्मा को बताती हूँ मम्मा की स्टूडेंट लाइफ और बाबा के साथ कैसे। तो न्याय समर्पण मम्मा पर कैसे हुई, मम्मा ने क्लास करवाया कुमारियों का, दिल्ली के आसपास के शहरों की कुमारियां आई, तो बताया समर्पण जीवन में सेवा से भाग्य कैसे बनता है, दुआएं मिलती हैं, नजदीक परिवार के आ जाते हैं, कर्म इंद्रियां शुद्ध होती हैं, तो हर एक का विश्वास बैठता है, तो ऐसा अच्छी बात। फिर कहा कौन काली पर बलि चढ़ेगा, मैंने हाथ उठाया, मम्मा ने बुला के मुझे गले लगाया, ऐसा लगा जैसे कि एक नया जीवन हो गया। फिर मेरे लौकिक माता भी आई हुई थी, तो घर गए वापस, तो कहा कि ऐसे थोड़ी समर्पण, छुट्टी लेनी चाहिए ना, छुट्टी के बगैर थोड़ी पेरेंट्स की छुट्टी चाहिए ना, पूछा क्यों नहीं। हाँ उन्होंने कहा पूछा क्यों नहीं, मैंने कहा मैं तो अचानक मर गई, मौत तो परमिशन लेती नहीं है, पूछ के मुझे तो ऐसा ही लगा वो सुदेश मर गई और मैं मम्मा की बन गई। तो ये थी मम्मा की, कहने का मतलब बिना बोले वो अंदर ताकत जैसे, शक्ति जैसे, वरदान का रूप जैसे होते हैं। फिर मम्मा का सेक्रेटरी बनने का मुझे चांस मिला, नजदीक जब दिल्ली में मम्मा फिर दोबारा आई, तो उस समय मैंने देखा मम्मा का प्रैक्टिकल दिन भर की दिनचर्या। अमृत वेले उठती थी, थोड़ी देर वो लॉन में वॉक करती थी नंगे पैर, गर्मी का मौसम था, पानी पी करके बैठ, फिर मेडिटेशन में बैठती थी, फिर बाबा मधुबन से नोट्स भेजते थे मम्मा के लिए खास, क्योंकि उस समय मुरली ये 58 की 59 की बात है, उस समय मुरली छपी हुई रही होती थी, कार्बन कॉपी निकालते थे, कार्बन कॉपी में 3 कॉपियां हाथ से लिखो, वो कॉपी जाती थी सेंटर पर, फिर नंबर वार 10-10 का ग्रुप या जैसा क्लास उस अनुसार वो पढ़ के नंबर वार पढ़ते थे, बहुत संभाल के प्लास्टिक के लिफाफे में रख के, पानी ना पड़े, दूसरे के पास पहुंचे, फिर तीसरा ग्रुप के पास। आजकल तो घर बैठे मुरली मिल जाती, उसी दिन मुरली क्लास में पहले पहुंच जाती। पर बाबा फिर मम्मा को नोट भिजवाते थे, श्यामतमणि दादी लिखती थी और भूरी दादी नीचे सब्जी लेने जाती थी। माउंट आबू में तो कुछ इतना मिलता नहीं था, आबू रोड पर सब्जी लेने जाती थी बस में। तो 9 बजे की जो मेल ट्रेन आती थी उसमें लेट फी पेड करके पोस्ट भेजते थे, वो दिल्ली में पहुंच जाती थी दूसरे दिन। तीसरे दिन मामा को नोट्स मिल जाते थे, मामा रोज नोट्स पढ़ती थी। वो नोट्स भी इतने प्यार से पढ़ती थी, फिर उस पर क्लास कराती थी। और मम्मा की दृष्टि में इतना पावर था जो ऐसे लगता था कि दृष्टि दे रही है, जैसे लाइट हाउस घूम गया, लाइट माइट जैसे वातावरण में आ गई। और दृष्टि देते बिल्कुल ऐसे महसूस होता था जैसी कोई लाइट खाली यहां नहीं है, वो लाइट का ओरा मम्मा का ओरा जैसे ताज पहना रही है। तो ये क्या जादू है क्या, मतलब इतनी मम्मा की शक्ति। और फिर पढ़ के क्लास करा के नाश्ता करके फिर पोस्ट, दिल्ली में मम्मा ही थी तो मम्मा के पास ही पोस्ट सारी आती। हर एक कोई अपने जीवन की कहानी जिनको लिखनी होती थी, सेंटर की समाचार समस्याएं, मम्मा इतने प्यार से सुन के उसका हल क्या है, योग युक्त कैसे रहो, ये सब बहुत अच्छी तरह शिक्षा देती थी हमको पर्सनल। पहली मैं अपनी कहानी तो मैंने फिर मम्मा को बताया ना कि मेरी लौकिक माता ने कहा कि तेरा बाप चिट्ठी तो देगा नहीं, छुट्टी कैसे मिलेगी। मैंने मम्मा को बताया, मम्मा ने कहा अगर तुम योग युक्त होकर के दृढ़ निश्चय से अपने जीवन को सफल करना चाहती हो और बाबा से योग लगाओ, बाबा ये काम करेगा, तुम्हारे फादर को टच होगा चिट्ठी देने का। तो 15 दिन मैंने, रामलीला अक्टूबर में होती है, 15 दिन हम हमेशा भी वैसे भी जाते थे, तो मैं रात को हमारे भाई बहन रामलीला देखने जाते थे, मैं 9 बजे से 11:30-12 तक योग करती थी। वो 15 दिन के योग में भी कमाल था। वहां पर फिर सेंटर पर प्रोग्राम होते थे ना, कभी शांति सप्ताह कभी पवित्रता सप्ताह, हमारे फादर ने सेंटर पर जाना शुरू कर दिया। तो एक दिन प्रोग्राम में मम्मा की क्लास में अनाउंस हुआ, मम्मा नजदीक के किसी शहर में जा रही है, कोई कुमारी जाना चाहे तो मम्मा के साथ जा सकती है। मेरे लौकिक फादर ने कहा सुदेश शहर घूम के आना, तुम भी जाओ साथ में। मैंने कहा फिर आपकी चिट्ठी चाहिए ना, का क्या बड़ी बात है, मैं चिट्ठी लिख देता। वो मम्मा ने कहा उसको टच होगी। फिर हमारी मासी की, मासी ने सेंटर खोला था तो उनकी तबीयत खराब हुई, दिल्ली में ही चांदनी चौक में जो सेंटर है वो उसकी संभालती थी। तो फिर मम्मा ने हमारे फादर को कहा कि मासी को मदद चाहिए तो सुदेश को भेजोगे। कहा मम्मा आप कहते हो तो कोई बात नहीं, मासी के घर ही तो जाना है, भले जाए। तो मेरे को मम्मा ने ही समर्पण के लिए, मम्मा ने ही छुट्टी दिलाई। ऐसे मतलब हर बार मैं हाथ हर स्टेप में शक्ति भरी। पर मम्मा का अपना जीवन, मेरी कहानी तो फिर ये है कि मम्मा पहली कुमारी, तब तक कोई सभा में समर्पण नहीं हुआ था क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों के नाम से लोग डरते थे और मिसअंडरस्टैंडिंग थी। पर हमारे फादर और मदर को, भाइयों को विश्वास हुआ था तो ऑफिशियली सभा में मूलचंद हॉस्पिटल था साउथ एक्सटेंशन में, वहां के प्रोग्राम में, वहां पर प्रोग्राम हुआ था तो ऑफिशियली समर्पण किया पहली कुमारी। बहनें तो रहती होंगी सेंटर पर, और बहनें जो थी हमारे से जो भी पहले आई, परंतु अब तो समर्पण का सिस्टम बन गया। पर ये कोई धूमधाम से नहीं, ताज पहना के चुन्नी पहना के ऐसे नहीं था, पर मामा पर समर्पण। तो ये भी एक हमारा सौभाग्य था। तो मम्मा जब दिल्ली रजौरी में आके रही, हाँ मैं जब सेंटर पर रहने लगी तो मम्मा कैसे आत्मा को रियलाइज करा के हिम्मत देती है। मैं रहने लगी वहां पर तो मेरे को, क्योंकि मासी को हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो वहां के भाई बहन बुजुर्ग थे मेरे दादा दादी जैसे, अब उनके घर की प्रॉब्लम मैं कहा समझू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था, भाषा ही नहीं समझ में आती थी। मैं आई, मम्मा ने बुलाया टीचर्स को, मेरे को भी बुलाया। मैंने कहा मम्मा मुझे सेंटर पर नहीं रहने। कहा क्यों, तुमको क्या हुआ, तुमको तो सेंटर पर रहने का ही तो लक्ष्य था। मैंने कहा मम्मा मैं इतनी छोटी, मेरी उम्र 18 साल की और वो तो 80 साल के 70 साल के बुजुर्ग जो है, परिवार वाले बहुत, घर की प्रॉब्लम बहुत बताते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मम्मा ने कहा सुदेश मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी बॉडी कॉन्शियस हो, इतना तुम्हारे में देह अभिमान है। मैंने कहा मम्मा मैं तो मन की बात बता रही हूँ आपसे, मैं नहीं संभाल सकती। मम्मा ने कहा तुम शरीर हो या आत्मा, पहला सबक याद है आत्मा की उम्र कितनी है, आत्मा कितने साल की है। शरीर की उम्र मम्मा की भी तो इतनी ही थी ना, बाबा ने में जो काम दिया मम्मा ने वो किया, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, अब नहीं तो कब नहीं, जो काम दिया सो किया। तो देह की एज से देह का भान शिव शक्ति, मम्मा कैसे बाबा ने मम्मा, तो तुम भी शिव शक्ति हो, बाबा टच करेगा, तुम दूसरे दिन की मुरली अच्छी तरह से पढ़ना, उसमें उत्तर उनका आ जाएगा, बाबा अपने आप जवाब देगा, ये नहीं सोचो मुझे जवाब देने। फिर मुरली से पढ़ के फिर कहो देखो आपने कल ये प्रश्न पूछा ना, बाबा ने आज जवाब दिए, तो मैंपन भी नहीं आएगा और बाबा अपना काम भी करा लेगा। तो मम्मा ने युक्ति ऐसी बताई, ये सॉन्ग चलते थे तो गीत पर कहती थी एक लाइन पर 5 मिनट भाषण करो, मानम गीत बजा मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, तो असली मरना जीना क्या है, सब ऐसे करके सिखाया, भाषण करना सिखाया। तो जो बात थी ये ट्रेनिंग, मतलब मम्मा को पालना देने का एक स्वभाव, और बिल्कुल सदा ही न्यारी अपने शरीर से। जब तबीयत खराब हुई हॉस्पिटल में रही तो मम्मा को कैंसर था, आखिर लास्ट स्टेज भी पहुंची, तो डॉक्टर ने आया बॉम्बे में, रात की ड्यूटी चेंज हुई, तो डॉक्टर ने देखा कि तबीयत ठीक नहीं होगी, दवाई खाई होगी जरूर, पेन तो हुआ होगा, तो मम्मा तो तैयार होकर के मुरली पढ़ रही थी, उनकी ब्रह्मणी दूसरी कुर्सी पर बैठी थी। वो नया डॉक्टर था, रात की ड्यूटी से दूसरा कोई डॉक्टर आया, तो उस जमुना के पास गया, मतलब मम्मा की ब्रह्मणी के पास। मम्मा की ब्रह्मणी के पास गया का रात को नींद आई थी, दवाई खाई थी, तो कहते मैं बस पेशेंट नहीं हूँ, ये पेशेंट है। मम्मा के चेहरे से पता नहीं चलता था पेशेंट। तो मतलब जीवन से मम्मा ने लाइफ से लाइफ बनाई है, इसलिए मम्मा मम्मा बनी। लाइफ से लाइफ बनाई, भाषण करके नहीं, प्रैक्टिकल में अपने जीवन में। और सारे दिन की शिक्षा मतलब पोस्ट होती थी, बड़ी गंभीरता से लिखवाती थी। फिर वो कोई जब चिट्ठियां लिखते थे, कोई अपने मन की बात भूल लिखी भी सही, मम्मा कभी उसको रिवाइज नहीं कराती थी, तुमने ये भूल की अभी ठीक हुए। तो एक दिन मैंने मम्मा को कहा, मम्मा इसने तो भूल लिखी थी ना, आप पूछते तो सही, बदली की है अपने आप को। मम्मा कहती है, भूल करने वाले को अपनी भूल याद करा के गिल्टी कॉन्शियस महसूस कराना सबसे ज्यादा भूल है। भूल जाओ, मम्मा तो भूल गई, तो भूल को भुलवाने की और भूल को दिल से माफ करने की, दिल साफ रखने की, प्रकाश देने की, शक्ति देने की, इसलिए वो शिव शक्ति रैम दिल माँ। मम्मा के गुण, मेरा कहने का मतलब ये, पढ़ाई पर इतना ध्यान कि दोपहर के भोजन के बाद रेस्ट करके बाबा की टेप सुनती थी, मुरली पढ़ी, नोट्स पढ़े, क्लास कराया, टेप सुनी। रात्रि को फिर हम से बैठती थी तो कोई ना कोई होमवर्क देती थी, सिखाती थी, घर वालों से बैठती थी। और टाइम एक बारी कोई एक भाई है, आते तो रहते ही थे मम्मा से मिलने के लिए, टाइम होता है मैं खत्म करती हूँ, तो मम्मा से मिलने के लिए मैंने उसको कहा, भाई अभी 8:30 बज गए हैं, मम्मा तो सारा दिन बिजी रही है, कल आना। मैंने भेज दिया। दूसरे दिन वो आया, मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा कल भी आया था, लेट आया था, मैंने वापस भेज दिया। कहा क्यों? मैंने कहा आप सारा दिन बिजी थे ना। कहा पूछा था क्यों देर से आया था, कोई कारण होगा, बस नहीं मिली होगी, ट्रेन नहीं मिली होगी, कोई प्यासा आवे और उसको पानी का गिलास चाहिए, तुम उसको कहना कल आके पीना। प्यास उसको आज लगी है, कल आके पानी पीना। कोई प्यासा भगवान के घर में आया, उनकी प्यास तो बुझानी चाहिए। तो मम्मा की दृष्टि, मम्मा का मुस्कराना, मम्मा का, और अंत समय भी मम्मा ने शरीर छोड़ा, मैं मधुबन में थी, मम्मा ने सबको अंगूर खिलाए, ऐसा लगता ही नहीं था कि अभी जा रही है। 12 बजे ब्रह्मा भोजन के बाद जितने भी ब्राह्मण माउंट आबू में थे, ये मम्मा के कमरे में मम्मा थी, बहुत प्यार से सबको अंगूर खिलाए, 4 बजे शरीर छोड़ दिए। तो मतलब यह है, मम्मा की जीवन एग्जाम्पल था, वाइब्रेशंस में शक्ति थी, दृष्टि में जैसे कि एक लाइट और माइट का सकाश और पावर थी, इसलिए इतनी शीतला भी थी तो दुर्गा भी थी तो लक्ष्मी तो बनने की थी। हाँ एक बस लास्ट बात, एक बार एक दादी ने कहा, यही मधुबन में, मम्मा आपको तो नशा रहता होगा, आप लक्ष्मी बनोगी, हमको तो लक्ष्य रखना पड़ता है, आपको फिर आप क्यों पुरुषार्थ करती हो इतना। मम्मा कहती है, वो तो पुरुषार्थ करूंगी तो बनूंगी ना, लक्ष्मी कोई बन थोड़ा गई हूं, अभी तो स्टूडेंट हूं ना, बाबा की बेटी हूं, जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे मैं पढ़ रही हूं। हम लोग जल्दी बाबा का हाथ पकड़ लेते थे, मम्मा ने कभी बाबा का हाथ पकड़ के नहीं थे। हम बहुत नजदीक थे मम्मा के, बाबा के, मम्मा ऑफिशियल होती थी, मुरली सुनती थी, ऐसे मम्मा थी, इधर बाबा बैठते थे, सारा समय एक घंटा मुरली चलती थी, मम्मा का फेस ऐसा ही होता था। फिर क्योंकि मम्मा मुरली चलाती थी बाबा से पहले, तो पहले हम नव स्टूडेंट्स को मम्मा की मुरली सुनाते थे, बाबा की मुरली के साथ मम्मा की मुरली भी आती थी, एक पेज होता था, नवे स्टूडेंट को मम्मा की मुरली सुना के तैयार करके फिर बाबा की मुरली सुना। मम्मा कैसे जगदम्बा बन गई, सरस्वती, शीतला, गंगा, पर गुप्त, इसलिए सरस्वती गुप्त है, सब गुप्त पुरुषार्थ की। ओम शांति।